वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 330 पीपीएम पार्ट्स पर मिलियंस है। इस सदी के अंत तक इसकी मात्रा बढ़कर 400 पीपीएम हो जाने की संभावना है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वर्तमान दर बनी रही तो सन 2040 तक इस गैस की मात्रा दोगुनी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप सन 2040 तक विश्व के तापमान में 2 सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ग्रीनलैंड में हिमक्रोड के ऑक्सीजन आइसोटोप के अभिलेखों के अध्ययन से पता लगता है कि वर्तमान शीतलन की प्रवृत्ति, जो 1940 से प्रारंभ हुई, एक अस्थायी घटना है। एक या दो दशकों के बाद वायुमंडलीय तापमान में पुनः वृद्धि होने लगेगी। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि अगली शताब्दी के प्रथम 2 दशक में वायुमंडल के तापमान में इतनी वृद्धि होगी जितनी पिछले 1000 वर्षों में कभी नहीं हुई। अतः इस गैस की मात्रा में लगातार वृद्धि होते रहने से तापमान में बहुत अधिक वृद्धि का खतरा है। इस बात की भी संभावना पाई जाती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि से तापमान में गिरावट आ जाए। यह इस प्रकार संभव है। इस गैस की अधिकता से सर्वप्रथम तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण वाष्पन की दर बढ़ जाती है और उससे अधिक मेघाच्छादन क्लाउडनेस उत्पन्न होता है। अधिक मेघाच्छादन के परिणाम स्वरूप धरातल पर सौर विकिरण की अपेक्षाकृत कम मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल के तापमान में कमी होना स्वाभाविक है। वायुमंडल एक अत्यंत जटिल अन्योन क्रिया वाला तंत्र है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के परिणामों के संबंध में अनेक संभावनाएं पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं भी की जाती हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि पूरा काल में वायुमंडल में इस गैस की मात्रा को निर्धारित करना संभव नहीं है। दूसरी आपत्ति यह है कि इस सिद्धांत द्वारा जलवायु में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों के कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, हिमयुगोत्तर काल अथवा ऐतिहासिक काल में जलवायु में जो उतार चढ़ाव आए, यह सिद्धांत उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। हटिंगटन तथा वीसर के मतानुसार इस सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। हिमनदन की समस्या का पूर्ण समाधान इस सिद्धांत से संभव नहीं है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में घटबढ़ जलवायु के दीर्घकालीन परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है। ज्वालामुखी धूल सिद्धांत। ज्वालामुखी से निकले हुए धूल कण अपने आकार के कारण सूर्य से आने वाले लघु तरंग प्रकाश का विक्षेपण करते हैं, किंतु दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण बिना किसी नुकसान के ज्वालामुखी से निकले हुए धूल में से गुजर जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि ज्वालामुखी धूल से पृथ्वी के तापमान में कुछ कमी हो जाती है। संभवतः लघु हिमयुग, लिटिल आइस एज, के लिए उत्तरदायी कारकों में ज्वालामुखी धूल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इस सिद्धांत के अनुसार हिमयुगों का प्रादुर्भाव ज्वालामुखी के अधिकाधिक उद्गार के काल में हुआ माना जाता है। सन 1883 ईस्वी में पूर्वी द्वीप समूह में क्रैकाटोवा ज्वालामुखी का इतना भयानक विस्फोट हुआ कि द्वीप का अधिकांश भाग नष्ट हो गया और उसका विस्फोट 4,080 किलोमीटर दूर तक सुना गया। वायुमंडल में इतनी अधिक धूल प्रवेश कर गई कि 2 वर्षों तक सूर्यातप के समय आकाश का रंग अधिक लाल दिखाई पड़ता था। वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना से पता चलता है कि वायुमंडल में धूल की मात्रा अधिक होने से संपूर्ण विश्व का तापमान नीचे गिर गया। कालांतर में जब वायुमंडल में से धूल नीचे बैठ गई, तब तापमान सामान्य हो गया। ऐतिहासिक अभिलेखों से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि पिछले 1.5 शताब्दियों में ज्वालामुखी के विस्फोटों के कारण वायुमंडल के तापमान में कई अंशों की कमी हो गई। भूवैज्ञानिक परीक्षणों से ज्वालामुखी धूल सिद्धांत त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। यदि ज्वालामुखी धूल से हिमयुग का प्रारंभ संभव होता, तब अवसादों की परतों अथवा वर्तमान हिमनदों में या झीलों तथा महासागरों में विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले धूल कणों को सुरक्षित रहना चाहिए था। सैद्धांतिक रूप से हिमयुग की जलवायु के रिकॉर्ड और ज्वालामुखी क्रिया के अवसादी रिकॉर्ड की तुलना करके इस सिद्धांत का परीक्षण किया जा सकता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से एक विशाल क्षेत्र पर यथार्थ मापन करके इस सिद्धांत की वैधता का परीक्षण कर पाना असंभव है। भौगोलिक सिद्धांत। जलवायु शास्त्रियों में इस बात पर पूर्ण सहमति है कि महाद्वीपों का विस्तृत क्षेत्रों में उत्थान तथा पर्वत खंडों का स्थानीय उत्थान, ये दोनों ही तापमान में कमी ला देते हैं और साथ ही ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देते हैं जिनसे हिमनदों का निर्माण होने लगता है। वास्तव में इस परिकल्पना का अनुप्रयोग महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तन के संबंध में किया जाता है और इसका प्रतिपादन उस समय किया गया था जबकि अंतर हिमयुग की जानकारी नहीं थी। हिमयुगों तथा अंतर हिमयुगों के अनुक्रम से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पर्वत निर्माण की लंबी अवधि और तदुपरांत व्यापक पैमाने पर अपरदन के साथ साथ बारंबार धरातल में परिवर्तन हो, किंतु इसे सिद्ध करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं मिलता। बड़े पैमाने पर होने वाले धरातलीय परिवर्तनों से वायुमंडल तथा महासागरों की परिसंचरण प्रणालियों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन व्यापक रूप से जलवायु को प्रभावित करते हैं। चैम्बरलिन के विचार से स्थल भाग का उत्थान, पवन धाराओं तथा महासागरीय धाराओं में परिवर्तन तथा इनसे संबद्ध अन्य बातों का प्रभाव जलवायु परिवर्तन का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। सौर विकिरण में परिवर्तन के सिद्धांत। इस वर्ग के अंतर्गत उन सभी सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है जो सौर ऊर्जा की परिवर्तनशील मात्रा को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानते हैं। ये सभी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा में घट बढ़ हुआ करती है। इन सिद्धांतों के अनुसार सूर्य से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को निरपेक्ष मात्रा एब्सोल्यूट क्वांटिटी में परिवर्तन के अनुसार ही पृथ्वी पर जलवायु में उतार चढ़ाव होता है। इस वर्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत परवर्ती सूर्य सिद्धांत वेरिएबल सन थियरी माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह है कि सूर्य एक परिवर्तनशील तारा है। और उसकी विकिरण ऊर्जा में समय समय पर घटबढ़ हुआ करती है। सौर विकिरण में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है और उसकी मात्रा में कमी होने से वायुमंडलीय तापमान में गिरावट आ जाती है। यद्यपि कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा सौर ऊर्जा का मापन संभव हो गया है, तथापि इस जटिल तकनीकी का अब तक कोई उपयोग नहीं किया जा सका है। आज भी वैज्ञानिक सौर ऊर्जा के मापन के लिए धरातल पर आधारित अनुमानों का आश्रय लेते हैं। सौर कलंक सिद्धांत सनस्पॉट थ्योरी इसी वर्ग का एक अन्य सिद्धांत है, जिसके अनुसार सूर्य में दिखाई पड़ने वाले धब्बों स्पॉट्स का जलवायु परिवर्तन से घनिष्ठ संबंध है। सूर्य के तल पर दिखाई पड़ने वाले धब्बे वास्तव में वहां उत्पन्न चुंबकीय तूफान हैं। इन तूफानों के उठने से सूर्य की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, अतः धब्बों की संख्या जितनी ही अधिक होगी सूर्य से ऊर्जा का विकिरण उतना ही अधिक होगा। सूर्य के धब्बों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी चक्रीय प्रणाली के अनुसार होती है। हटिंगटन एवं वीसर के अनुसार सौर कलंक की अधिकतम संख्या होने पर पृथ्वी पर अधिक तूफानी और वर्षाकारी मौसम होता है, अतः अनुकूल परिस्थितियों में अधिक हिम एकत्रित हो जाता है। अनेक प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि हिमयुगों के गमन आगमन एवं सौरकलंकों के चक्रों में घनिष्ठ सहसंबंध है। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के ऐसे चक्रों का उल्लेख किया है, जैसे 11 वर्षीय चक्र, 23 वर्षीय चक्र अथवा इससे लंबी अवधि वाले चक्र। चूंकि जलवायु की दशाओं पर सर्वाधिक नियंत्रण सूर्य का होता है, अतः सौर विकिरण की मात्रा में यदि किसी प्रकार का भारी परिवर्तन होता है तो उसी के अनुपात में जलवायु में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि सौर कलंक सूर्य की क्रियाशीलता के सूचक होते हैं। विगत शताब्दी में किए गए निरीक्षणों से यह स्पष्ट हो गया है कि विगत 1000 वर्षों में पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनदों के मंद गति से अग्रसर होने तथा सूर्य की क्रियाशीलता के परिवर्तनों में सहसंबंध है। वैज्ञानिकों की राय में जब तक हम यह गणना करने में सफल नहीं हो जाते कि किस प्रकार समय के साथ सौर विकिरण की तीव्रता में घटबढ़ होती रहती है, तब तक यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन ही हिमयुग का कारण है। मानवीय क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन चेंज इन माइक्रोक्लाइमेट बाय मैन्स एक्टिविटी। मनुष्य की विविध क्रियाओं के फलस्वरूप जलवायु में किए गए परिवर्तन का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। यह भी सत्य है कि जलवायु के प्राकृतिक परिणामों तथा उसके तत्वों में मनुष्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु सूक्ष्म जलवायु की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अपने विभिन्न कार्यकलापों के द्वारा इसमें भारी मात्रा में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य कृषि कार्य अथवा उद्योग धंधों की स्थापना के लिए जंगलों को काटकर साफ कर देता है अथवा वनों का निष्पत्रण डिफोलिएशन कर डालता है, तब वह अनजाने में सूक्ष्म जलवायु को बदल डालता है और उसे इसका बोध भी नहीं होता। जंगलों की कटाई तथा वृक्षों की पत्तियों के विनाश हो जाने पर वात्पोत्सर्जन की दर में कमी हो जाती है और धरातल पर गिरने वाले वर्षा के जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी के तल पर छाया एवं भूभाग में परिवर्तन करके मनुष्य वहां के तापमान तथा पवनों को प्रभावित करता है। इसके विपरीत वनों का विकास करने से धरातल पर गिरने वाले वर्षा के जल की मात्रा में निश्चित रूप से कमी हो जाती है और पवनों का वेग भी वृक्षों के अवरोध से कम हो जाता है। इस प्रकार वनों का विकास करके हम धरातलीय तापमान को नियंत्रित करते हैं। सिंचाई, कृत्रिम जलाशय एवं झीलों का निर्माण, नदियों के प्रवाह पथ को मोड़ देना अथवा तटवर्ती दलदली भूमि का उद्धार आदि कार्य पर्यावरण में बदलाव ला देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र विशेष की सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उपलब्ध प्राकृतिक नमी में परिवर्तन, स्थल अथवा जल की सतह में परिवर्तन द्वारा विभेदी उष्मन को प्रभावित करना तथा स्थानीय रूप से पवन प्रवाह में परिवर्तन आदि। इस प्रकार अपने चारों ओर फैले हुए प्राकृतिक भूदृश्यों को परिवर्तित करके स्थानीय रूप से मनुष्य ने धरातल द्वारा अवशोषित सूर्यातप की मात्रा को भी बदल डाला। उदाहरण के लिए नगरों में बनाई गई सड़कें और पक्की जमीन घास के मैदानों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सौर विकिरण का अवशोषण करती है। मनुष्य ने अपनी क्रियाओं द्वारा अनजाने में ही स्थानीय जलवायु में परिवर्तन कर डाला है। आज नगरों की संख्या में सभी देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। हम सभी यह भलीभांति जानते हैं कि नगरी बस्तियां गांव अथवा खुले मैदानों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। इसके अनेक कारण हैं। नगरों में निर्मित पक्की इमारतें और सड़कें मिट्टी अथवा वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिससे उनसे संलग्न वायु की परतें पार्थिव विकिरण द्वारा अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाती हैं। नगरों में बनी इमारतों के कारण पवन का वेग भी कम हो जाता है, जिससे हवाएं इमारतों के बीच वाले खुले स्थानों से ऊपर उठती हैं और कुछ ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार इमारतों के भीतरी भागों को गर्म करना, एयर कंडीशनरों से निकली हुई ऊष्मा, उद्योग धंधों की भट्टियों में जलाया गया ईंधन, ये सभी सम्मिलित रूप से नगरों के तापमान को आसपास के खुले भूभागों की अपेक्षा ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अपने इर्द गिर्द के वातावरण की तुलना में नगरों में वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। कारण स्पष्ट है। कल कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में ऐसे प्रदूषणकारी कणों को वहां की वायु में छोड़ते हैं जिनमें कुछ संघनन नाभिकों कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का कार्य करते हैं। इन नाभिकों पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने से जल सीकरों वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नगरों की पक्की जमीन और इमारतों की दीवारों से उत्सर्जित ऊष्मा के कारण नगरों के वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब कारणों से वृष्टि की संभावना में वृद्धि हो जाती है। स्पष्ट है कि नगरीकरण एवं उद्योगीकरण से वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाता है। वर्षा के अतिरिक्त नगरों की उपर्युक्त दशाएं तड़ी झंझा तथा तुषार वृष्टि में भी सहायक होती हैं। नगरों में संघनन नाभिकों एवं प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से अधिक कोहरा उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त नगरों के ऊपर वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमणता परतों का निर्माण हो जाने से भी कोहरे के निर्माण में सहायता मिलती है। तापमान व्युत्क्रमणता का कारण नगरीय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की मात्रा की अधिकता है, जिससे पार्थिव विकिरण का अवशोषण होता है और इस प्रकार नगर के धरातल की ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत का निर्माण हो जाता है। तापमान व्युत्क्रमणता के कारण वायुमंडल में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रदूषण करने वाले कणों तथा गैसों का ऊपर जाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार अधिक वर्षा, मेघ तथा कोहरे तथा प्रदूषणकारी तत्वों की निकासी न होने के कारण नगरीय वायुमंडल की पारदर्शकता कम हो जाती है और धूप की कम मात्रा प्राप्त होती है। लंदन जैसे विशाल औद्योगिक केंद्र में शीतकाल में स्मॉग उत्पन्न हो जाने से वहाँ का वायुमंडल इतना प्रदूषित हो जाता है कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और श्वास संबंधी अनेक बीमारियां फैल जाती हैं। स्मॉग वह विषाक्त कोहरा है जिससे भवन की दीवारें तथा मूर्तियां आदि भी प्रभावित हो जाती हैं। इस प्रकार इससे कृषकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वच्छ वायुमंडल को आज का विकसित मानव किस सीमा तक प्रदूषित कर रहा है, यह चिंता का विषय है। इससे स्थानीय जलवायु इतनी परिवर्तित हो गई है कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वायुमंडलीय प्रदूषण से उत्पन्न खतरे को देखते हुए विभिन्न देशों में ऐसे कठोर कानून बनाए गए हैं जो प्रदूषण पर नियंत्रण रख सकें। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय रूप से जलवायु में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों के लिए मानवीय क्रियाएं निश्चित रूप से उत्तरदायी हैं।